ये सब लोग सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, किसी को संदेह ही नहीं होता है। इसलिए वहां पर ठाकुर जी को जो भी प्रसाद कच्चा पक्का लगता है उसमें छुआछूत और सबका कोई विचार नहीं, और सबके वो सर्वमान्य है, जगत के लोग उनके दर्शनों के लिए जाते हैं। तो वो पूछ रहे हैं ये प्रभु, जगन्नाथ जी श्रीरंगम और सब तो भगवत स्वरूप ही हैं, किंतु और भी जितनी भी प्रतिमाएं विश्व में हैं ठाकुर जी की, उनका आदर किस प्रकार से करना चाहिए? वो क्या वो सभी सच्चिदानंद घन हैं और उनकी पूजा करने से ही भगवान की पूजा हो जाएगी? एक प्रश्न कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, जितने विग्रह हैं एको अभी भगवान सच्चिदानंद विग्रह कृपया तत्र तत्र अस्ति सद्गुरु दया। उन्होंने कहा जितने भी विग्रह विश्व में हैं सब सच्चिदानंद है, और एक ही भगवान भक्तों के प्रति कृपा करने के लिए पृथक पृथक स्वरूपों में लीलावस्था विराजमान। हम उनकी प्रत्यक्ष रूप में सेवा नहीं कर सकते, जैसे प्रत्यक्ष रूप में लक्ष्मी जी नारायण की सेवा करती हैं, गोपियां कृष्ण की सेवा करती हैं, प्रहलाद महाराज जी नृसिंह देव की सेवा करते हैं प्रत्यक्ष। हम लोग कहेंगे जब प्रभु आप सोने का समय हो गया, आधी रात हो गई, अभी तक आप सो नहीं रहे हैं, हमको बड़ी नींद आ रही है, पर प्रभु कहेंगे कि हमको नींद नहीं आती, तुम जाकर के सो जाओ, तो जाकर के हम सो जाएंगे। यदि ठाकुर जी बोलते और अपनी इच्छा से कहते जी हमारा पैर दबा दो, आज रसोई ठीक नहीं बनी है ऐसे बना, तो हम उनकी जब हमारी ही इच्छा के अनुसार में कोई नहीं कर पाता है, कोई गुरु की सेवा भी वैसे गुरु जी के समान नहीं कर पाता है, तो भगवान यदि साक्षात रूप में रह करके कहेंगे हमारी ये सेवा करो तो कर सकता है तुम? इसलिए प्रभु मौन मत डाटा, मौन होकर के लोगों की सेवा, अच्छा जितना कर रहा है इतना कर रहा है, इतना ही दे, इतनी भी सेवा को वो बहुत आनंद करते हैं। इसलिए वो कहते हैं
भगवान तो भक्त वत्सल, भगवान भक्त बोल गए नहीं।
तो भगवान के जितने भी विग्रह में सच्चा है, जीवों पर कृपा करने के लिए जब देखा कि किसी प्रकार से इनके ऊपर में हमारा प्रभाव नहीं होगा और ये हमारा भजन नहीं करेंगे, अंततः प्रणाम तो कर ही देंगे, इसलिए वो श्री विग्रह के रूप में प्रकाशित है। और जीवों को जितनी प्रकार की रुचि हो सकती है उनके रुचियों के अनुसार में सेवा लेने के लिए विभिन्न रूप धारण कर रहे हैं। कोई दासर सेवा करेगा, कोई सख्य रूप से, कोई बात से। कृष्ण लड्डू गोपाल क्यों हो गए? भक्तों की बहुत से लोग पुत्र के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि स्त्रियां जो बड़ी हो गई हैं प्रौढ़ जिनके संतान अपने बच्चों को सबसे अधिक सेवा करती हैं, पति की सेवा भी भूल जाती है, बल्कि पति से भी कहेंगे जरा बच्चे को लो मैं ये काम कर रहा हूँ, उनको भी ये दे देंगे, मुझे बच्चे को पकड़ नहीं, बच्चे के लिए दूध ले आओ तो कह देंगे कहाँ, पति की सेवा करेंगे, पति के लिए हुक्म दे रहे हैं, बच्चे की सेवा के लिए जाओ दूध ले आओ, बच्चे को बीमारी हो डॉक्टर बुला लाइए, बच्चे को स्कूल दे जाइए, तब अपने साथी अपने काम पर जाएंगे, इसको स्कूल में लेते पहुँचाएंगे, तो बच्चे की सेवा उसे कराया, तो वो बच्चे के भाव को पसंद करते हैं बात समझे भाव, तो उनके लिए बाल गोपाल बन गए, किसी के लिए कुछ बन जाते हैं, किसी के लिए कुछ बनते हैं, किंतु उनकी सब ये जितने विग्रह हैं वो नित्य हैं, किंतु सेवा के लिए प्रभु ने इतने रूप धारण किए हैं, विग्रह बने हैं और बोलते नहीं हैं, बोलेंगे तो उनकी सेवा तो कोई कर ही नहीं सकता। रात में उनको ठंड लग रही है, रात 1 बजे 2 बजे 3 बजे, और ऐसा भक्त है जो सो रहा है, प्रभु से कहेंगे, बार बार कहेंगे, एक दिन कहेंगे, दो दिन कहेंगे, तीन दिन, चार दिन, रोज रोज कहने लगेंगे, तो फिर वो भक्त क्या करेगा। इसलिए वो चुपचाप मौन मर्द त्याग होकर के वैसे ही सेवा करते। ठाकुर जी बैठे हुए हैं, हम दो आदमी लड़ गए और करताल लेकर के दूसरों से मारना मारामारी कर दिया या लड़ने झगड़ने दिया, किसी का हाथ पकड़ करके तोड़ दिया। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, मानो कुछ नहीं जाने, और वो चाहे तो क्या ना करते किंतु कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? एक तो अपराधी और भी अपराधी, इसलिए कुछ बोलते नहीं है, चाहते नहीं। किंतु हम लोगों को विचार करना चाहिए, वो सब देख रहे हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं धर्म काटे पर वजन करके, और वो सब का फल हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी के सामने पद प्रसारण करना, अधिक बोलना, किसी पर राग बिगाड़ना, किसी पर स्नेह करना, ठाकुर जी के सामने किसी पर स्नेह मत करो, ठाकुर जी के सामने किसी को भी प्रणाम मत करो, केवल और किसी को प्रणाम मत करो, जोर से बात मत करो, ये सब विचार है। और नहीं तो ऐसा ठाकुर जी के घर में यहाँ से बिगड़ करके झगड़ा करके गए और पुजारी को कहा कान पकड़ के जाओ उधर, और खूब बिगड़ करके मैं नहीं कर सकता, और जाकर के पूजा करने बैठे, चित्त चंचल है और बिगड़ रहे हैं, वो पूजा ठाकुर जी का होगा कि नहीं? अपराध। इसलिए चंचल चित्त करके ठाकुर जी का पूजा इत्यादि किंतु ठाकुर जी चुपचाप मानो कुछ देखते नहीं हैं, ये बैठे बड़े दयालु हैं। कभी कभी भक्तों का अपराध नहीं होता, इसलिए सब प्रकार का साधन छोड़ करके जो लोग प्रतिमा का अर्चन करते हैं उनका कल्याण होता है। किंतु ये पूछ रहे हैं, ये प्रभु शास्त्रों में कहीं कहीं ये बतलाया गया है जो प्रतिमा का अर्चन तो करता है किंतु भक्तों का अनादर करता है, या हरे पूजा श्रद्धय हते अर्चायांग पूजा न तद भक्तेषु चान्येषु, और कहा गया है जो मन सर्वेश भूतेषु संतम आत्मान अनिश्वरम हित्वा अर्चांग भजते मौख्या भस्मनी एव जुहो, जो लोग सब भूतों में विशेष करके भक्तों में प्रीति नहीं रखते, भक्तों का आदर नहीं करते और जीवों में अधिष्ठित हूँ, प्रत्येक जीव में मेरा अधिष्ठान, ऐसा कोई जीव है जिसमें कि भगवान नहीं है और उनका वो अनादर करता है, मूर्ति की पूजा करता है, तो भस्म में घी ढालने के समान उनका ठाकुर जी का पूजा शास्त्र में कहा गया। ये पूछ रहे हैं आपने तो अर्चन की बड़ी महिमा बतलाई, किंतु शास्त्र में और विशेष करके श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी नारद व्यास और व्यास जी के वो पिता पराशर इत्यादि ये सब, नारद जी स्वयं भक्ति सूत्र और नारद पंचरात्र इत्यादि के और मूर्ति के पूजा के प्रथम प्रवर्तक हैं, और उन्होंने ऐसा कहा जो ऐसा यदि जो मांग सर्वभूतेषु संतम, मैं समस्त भूत और प्राणियों में हूँ और जीव उसका अधिष्ठान है और भगवान उसके अधिष्ठात्री हैं, ऐसे लोगों की सेवा छोड़ करके उनकी अवमानना और निंदा करते हुए ठाकुर जी की पूजा करता है मौख्या, वो मूढ़ता वशत उनका अनादर करता है और वो रात में, अरे आदमी घी डालो तो कुछ काम होगा, भस्म मैंने से तो वो जो वैष्णव की निंदा इत्यादि करता है और ठाकुर जी का आचरण करता है, खूब भजन परायण है। यदि कहीं से आम आया नीचे कोई रख दिया तो आम को फेंक दिया, ये सेवा में नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरे ने देख लिया है। भोजन करते समय में मुख में कपड़ा बांध करके आटा गूंथने के समय में बोलना नहीं चाहिए, बोलने से क्या होगा? कुछ लोग विचार वो सब मानता है कानून, किंतु भक्तों की निंदा करता है, भक्तों को ऊंचा नीचा देख समझता है। ऐसे लोगों का ठाकुर जी का अर्चन ये जो लिखा गया है वो भस्म में घी डालने के समान है। और भी अहम उच्चा बचय द्रव्य प्रियो उत्पन्न, ये श्रीमद्भागवत में ये सब बातें ये तृतीय अध्याय में कहते हैं। तृतीय अध्याय के 29 मैंने कपिल देव देवपुत्र के संवाद में कह रहा है। कौन कह रहा है? अहम कपिल देव कह रहे हैं, मैया अहम उच्चा बचय द्रव्य प्रियो उत्पन्न यानक, जो उच्च और अवश्य माने निम्न तरह के जो द्रव्य हैं, जैसे राबड़ी मलाई ले सकते हैं और पत्र पुष्प है, ये साधारण। एक बताशा से ठाकुर जी का भोग दिया, एक राबड़ी मलाई और तरह से भोग दिया, 1650 से पूजा ठाकुर जी की है, कोई 550 से किया, इसमें विशेष कोई अंतर नहीं है। भाव में अंतर हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि उच्च और अवच्छ निम्न वस्तुओं से जो ठाकुर जी की पूजा करते हैं, नैव तुष्यते तुष्ये अर्चितो अर्चायान भूत ग्राम अवमानिन, प्रत्येक प्राणियों में भूतों में भगवान का निवास, उनसे तो द्रोहाचरण करते हैं। कोई एक गरीब आदमी आया, थोड़ा सा प्रसाद दे, बस निकल जाओ, गए जाओ, नहीं गया तो हाथ पकड़ करके खींच करके एकदम बाहर सड़क तक, थोड़ा सा कुछ मांग रहा है, मुझे एक सीट के लिए कपड़े, क्या तुम्हारे बाप के यहाँ पर पौती है? तुम्हारे बाप की बपौती है जो तुमको मिल गया? तो प्रत्येक जीव में भगवान का निवास है, प्रतिष्ठान है। विशेष करके यहाँ पर भक्तों का संबंध अधिक बदला रहे हैं। जो लोग भगवान का भजन करते हैं अनन्य रूप में, उनके प्रति किसी प्रकार से अवमानना हुई, समस्त प्राणियों को भी ले लिया, जिवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, चैतन्य चैतामृत होता है। और हम लोग इसकी अवमानना करते हैं और अर्चन करते हैं खूब ठाट से, घंटा छोटे से नहीं चलता, चुनचुनिया अच्छी तरह से बड़ा सा घंटा लेकर के और सब समान वैसा रखा है, और किसी का अनादर करते हैं वैष्णव का, तो कहते हैं क्या भगवान उस अर्चन पूजा से संतुष्ट नहीं हो करके, बल्कि और उनके अपराधों को सम्मान। अभी कहा गया है प्रतिमा मंद बुद्धि नाम, जो मंद बुद्धि वाले हैं वही लोग पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं। एक जगह बतलाया गया है वो श्लोक, वैष्णवों में जाति बुद्धि आर्चे विष्णु शिलाधीश गुरु सुंदर वैष्णवे जात विष्णु आ वैष्णवान पदम कलिमल मथने पाद तीर्थे अम्ब बुद्धि विष्णु आ वैष्णवान सामान्य बुद्धि जाति बुद्धि स एव गोपर। जो लोग अर्चन के विषय में प्रतिमा में शिला की बुद्धि रखते हैं, ये शिला है, इसमें भगवान है तो पत्थर, किंतु इसके अंदर में भगवान है, ये शिला ही भगवान है ऐसा नहीं, इस शिला में वैष्णव के चरण धूलि में साधारण धूलि बुद्धि और उनके पदोदक में साधारण जल, तीर्थ को खूब मानते हैं किंतु विष्णु वैष्णव के चरणामृत में तीर्थ बुद्धि नहीं रखते, और पूर्णतः आत्मबुद्धि, ये मरने वाले चमड़े हाड़ और मांस और रक्त के शरीर में कुछ बुद्धि रखते हैं, देह में आत्मा रखते हैं, आत्मा है, और आत्मा को कुछ नहीं समझते, ये भगवान का अंश और प्रिय है, भले ही बद्ध है कोई बात नहीं, किंतु है तो भगवान का स्वरूपता दास, इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए। सम्मान के भी बहुत से तरीके हैं, जैसा वैष्णव है उसके यथाजोग्य सम्मान दीजिए, जानी कुछ ना कुछ यथाजोग्य, और ये नहीं करता है तो स एव गो खर, गो माने जानवर और खर माने जानवरों में गधा, गाधा गधा, जो जानवरों में गाय है ऐसा नहीं, गो माने नहीं, गाय माने, गाय तो बड़ी पवित्र चीज है, गायों में भी जानवरों में गो माने यहाँ पर जानवर, जानवरों में सबसे बड़ा गधा है इत्यादि। प्रभु ऐसा ये क्यों कहा गया है जरा बतलाइए, कि ऐसा प्रतिमा में प्रतिमा को अर्चन करने वालों को भी ऐसा क्यों कहा गया, आपने तो बतलाया जैसे अर्चनकारी सभी महान सौभाग्य समान, किंतु ऐसा भी देखा गया। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कल देने की कोशिश, इन चीजों को समझ बूझ करके हमें एकादशी के साथ में महाद्वादशी है, और उसमें यज्ञ बरात भगवान का प्रातक्य तिथि भी है, और इससे नित्यानंद प्रभु जी का भी संबंध त्रयोदशी से जुड़ जाएगा, और इधर में बसंत ऋतु है, बसंत पंचमी अभी गई, अब राधा कृष्ण के होली के कीर्तन भी होंगे, आज कीर्तन हुआ कि नहीं होली का,
हुआ
है, तो आज बहुत सी तिथियों का समावेश है। ब्रह्मा जी के पराक्रम में दो पराक्रम, अर्थात जब उनकी आयु शेष हो जाती है तो महाप्रलय होता है, बड़ा भारी प्रलय होता है, उसमें कुछ अवशेष नहीं आता, प्रकृति भी लीन हो जाती है, और सब करणाधिशायी विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। ये तो महाप्रलय हुआ, और एक प्रलय होता है ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद में जो रात होती है, जिसको कल्पांत कल्प कहते हैं, उस कभी ब्रह्मा जी के जबकि एक दिन पूरा हुआ, रात आई और उसमें भूर भुआ स्वह तीनों ही पानी से भर गए, इसके बाद में महाभयंकर प्रलय हुआ, कोई प्राणी नहीं बचा पूर्व वर्ष, इसके बाद में प्रलय समाप्त हो गया। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि सृष्टि करें, उसी समय स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी प्रकट हुए, उन्हीं ब्रह्मा से, ब्रह्मा जी उनसे कहा कि सृष्टि करना चाहिए, किंतु सृष्टि हो कैसे, इन दोनों ने कहा, पूछा पृथ्वी तो है नहीं, सृष्टि कहाँ होगी। ब्रह्मा जी ने सोचा भाई पृथ्वी गई कहाँ, कुछ पता नहीं चला, उन्होंने कहा भगवान का हम ध्यान करते हैं अपने आराध्य देव का, उनकी इच्छा से ही प्रलय हुआ है और उन्हीं की इच्छा से ही सृष्टि हुई, उनका ध्यान धराव चिंता करने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। इतने में उनके नासा क्षेत्र से कुछ मैल जैसी मालूम हुई और एक छोटा सा मैल जैसा उनके नाक से निकला और देखते देखते पर्वताकार हो गया और पर्वताकार हो करके यदि पर्वताकार होकर आकाश में अपने केशों को ऐसे ऐसे किया तो आपके लोग रखते तो अच्छा होगा, फिर इसको कम सेवा काम में लगा देती। दे दो वो कंठन करके ठीक रखेंगे फिर हमको समझा दो, उनको दे यही खजांची है। तो एकदम बादलों से ऊपर आकाश में और बादलों को चीर कर भीषण रूप में गर्जन करते हुए अपनी पूंछ को ऊपर कर और दोनों अगले पैरों को फूल को एक साथ ला करके और फूट गए। उस समय उसे विराट रूप में उठी लहर और वो महाजन तक एकदम पहुंच गई। इसके बाद में शुकरों को बराह को घ्राण शक्ति होती है, कोई भी चीज को नाक से सूंघे और ये जो घ्राण है कहीं नहीं है, जल में नहीं, हवा में नहीं, आग में नहीं, आकाश में, केवल मात्र पृथ्वी में ही ये सुगंध है। इसलिए पृथ्वी से पैदा होने वाले चीजों से ही सुगंध निकलती है। पानी में गंध नहीं, मिट्टी का गंध मिल करके उसमें गंध हो जाता है। ये गुलाब और जितने भी फूल हैं वो सब पृथ्वी से निकलते हैं इसलिए उसमें गंध है। तो सूंघ करके और उनको मालूम हुआ कि रसातल तक पृथ्वी चली गई है, बस वहां से रसातल से मैं पहुंच गए और वहां से लेकर पृथ्वी को ऊपर में ले आकर के पृथ्वी के धरातल पर मध्याकर्षण बिंदु में स्थापित किया और अंतर्ध्यान हो गए। निकाल करके रख करके और सोरों जो है सोरों में अंतर्ध्यान हुए, इसलिए वहां पर उनका विराट मंदिर और पूजा वहां पर होता है सोरों में। और पृथ्वी का केंद्र बिंदु यही सब बतलाया जाता है। दूसरी बार एक पांच बड़ा के लेख शास्त्र मंदिर थे, एक तो वो हुआ और दूसरी बार भगवान ब्रह्मा के नाक से नहीं ऐसे ही निकले। जिस समय में पहली बार में जो बतलाया वो काले रंग के थे इसलिए कृष्ण बारह काला था और हिरण्याक्ष से उनका युद्ध हुआ और हिरण्याक्ष को उन्होंने मारा था, ये कृष्ण बारह। और दूसरे बारह का मिलता है शुक्ल बारह, वेदों को असुरों ने चुरा दिया और रसातल में रख दिया। कैसे रख दिया, चुरा दिया? जैसे वेद हमारे भारतवर्ष में संस्कृत वांग्मय में थे, जर्मन विद्वानों ने आकर के, मैक्स मुलर जर्मन था, देखा रही वेदों में अथाह ज्ञान है, इसे तो बम बनाए जा सकते हैं, एरोप्लेन का इसमें सब विवरण है और सब चीजों का इसमें विवरण है, बस वो संस्कृत पढ़ा और उनके अर्थों को पढ़ा, इसमें उसके अर्थ रहते हैं, ये सब पढ़ा और वेदों को लेकर के चला गया अपने देश में। यहाँ पर लोग किसी चीज को बेचने के लिए कागज रखते हैं और उसमें पूड़िया बांध देते हैं, तो पुड़िया बांधने के रूप में वो सब कागज रखते हैं। कलकत्ते के हमारे एक सेठ ने, जिनका नाम था मोर कोई उनका नाम था, करोड़ों रुपए लगा करके उन्होंने समस्त पुराणों को छापा। एक दिन किसी कारण से वो बाजार में देखा कि चाक वाला पुराणों के पेजों को फाड़ फाड़ कर और चाक देकर के बहुत से लोग ऐसे मूल्यवान चीजों को ऐसे ही फेंक देते हैं, बेच देते हैं बिना पैसे का, उनका खूब व्यवहार करता। जर्मन के लोग ले गए, आज वही जर्मन लोग अभी भी संस्कृत पढ़ते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, जो हम लोग नहीं करते। अब तो अमेरिका वाले भी लोग संस्कृत पढ़ने लगे, भागवत गीता उपनिषद सब को लेकर के वो लोग ले गए, तो वो रसातल है ना, अमेरिका को तो नीचे ही एकदम ठीक नीचे है, तो रसातल वाले ले गए ना, और उसका उपयोग व्यवहारिक रूप में पूर्व वस्तुओं के लिए करने लगे। असल ज्ञान जो भगवत भक्ति का था वो तो उनको मिला नहीं, क्योंकि वो तो सदगुरु से होगा, और जो स्थूल चीजें हैं उनका वो व्यवहार करने लगे। इसी तरह से कभी कभी असुर लोग भी वेदों को चोरी कर रसातल में ले जाया करते हैं, भागवत को भी रसातल में ले जाएंगे, गीता को भी ले जाएंगे, और उसमें से अपने लायक जो बातें हैं उसको तो ले लेंगे, और बाकी जो भीतर की रहस्यपूर्ण जो बातें हैं उनको तो ले नहीं सकते। उसी तरह से वेद को चोरी करके रसातल में वो लोग ले गए। उस समय में बारा भगवान शुक्ल मूर्ति धारण कर और उसको जाकर के उद्धार किया था, और एक बड़ा पुराण बारा जी का और मिलता है विवरण। बारा भगवान जबकि देवता लोग हारने लगे और असुर लोगों की जीत होने लगी, तो उन लोगों ने यज्ञ में विष्णु की आराधना की, और उस समय में वही यज्ञ बारा के रूप में यज्ञ भगवान जो यज्ञ के सब को ग्रहण करने वाले प्रभु हैं, यज्ञेश्वर जिनको कहते हैं, बारा रूप में आए। उनके एक एक रूप जो हैं वो वेदों के सब मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, पुरुष सूक्त इत्यादि हैं, उनके खूर चार वेद हैं, और इस तरह से ऋषियों ने उनका सब वर्णन किया है और उनकी आराधना की। एक चतुर्थ बारा जी का ऐसा भी उल्लेख पाया जाता है कि पृथ्वी की सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी बड़ी उबड़ खाबड़ है, पानी इत्यादि कहीं नहीं रुकता, खेती बाड़ी हो नहीं सकती, प्रजा लोग होते हैं किंतु खाएंगे क्या, उनके लिए तो खाना और पीना कपड़े लत्ते ये सब चाहिए, कपड़े भी कहाँ से आएंगे जो जरूरी नहीं हुई तो। इस तरह से प्रजाओं के मंगल के लिए कारण के लिए भाई कुछ ऐसी जरूरत है पृथ्वी पर खेती भी हो और वर्षा का पानी भी जम सके, इसलिए उन्होंने प्रभु की आराधना की, तो वो हरि बारह के रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के अपने दांतों से और थूथनों से, दांत बड़े नोकीले रहते हैं ऐसे बड़े तीक्ष्ण होते हैं, और अपने थूथन उनके बड़े मजबूत होते हैं, बस पृथ्वी को बड़े बड़े पहाड़ों को चूर्ण कर दिया और पृथ्वी को धरातल को उन्होंने समतल किया, जहाँ पर कि खेती बाड़ी और ये सब चीज़ें हो सकती, और फिर बीज देकर के पेड़ पौधे लताएं और औषधियाँ, औषधियों में गेहूँ औषधि है, जौ औषधि है, धान औषधि, ये सब औषधियाँ हैं जो शरीर का पोषण करती हैं, ये सभी कुछ औषधियाँ हैं, उनमें से मनुष्यों ने अपने लिए उपयोगी जो चीज़ें हैं जिन जिनको जानते हैं फूल है, उनका पृथ्वी पर कृषि के रूप में उनका दोहन किया, और इसके बाद में उसी समय जिसमें तोड़ रहे थे बड़े परिश्रम हो रही थी, तो उनकी सेवा के लिए पृथ्वी जी ने देखा इनकी सेवा करते हैं, तो उन्होंने सुपरी का रूप धारण कर दिया और उनकी सेवा की। उसी से उनको पुत्र पैदा हुआ नरकासुर, और एक कोई और पुत्र, दो पुत्र की बात की, एक का तो मुझे पता नहीं किंतु एक का तो पता है नरकासुर। तो उसका नरकासुर नाम नहीं था, वो धारित्री पुत्र था, जैसे यशोदा नंदन है धरित्री नंदन उसका नाम था या कुछ ऐसे नाम था, किंतु दुष्ट लोगों के संग में रहने के कारण दुर्बुद्धि हो गई और वो अंत में भगवान कृष्ण के हाथों से द्वापर युग के अंत में मारा गया। इतना दिन तक वो जीवित था और उसी ने 16,000 राजकुमारियों को अपने जेलों के शिकंजों में बंद करके रखा था, जिसको कृष्ण ने पीछे से उनके साथ विवाह किया था। उसमें से जो कृष्ण बारह हैं, जब अंतर ध्यान हो गए तो उन्हीं की मूर्ति को कुबेर जी पूजा करते थे स्वर्ग लोग, और पीछे से बारह जी उनके यहाँ पूजित होते थे। तो रावण ने उनका विमान अपहरण करने के लिए और लंका राज्य लेने के लिए चढ़ाई किया और लंका को जीत कर और वो विमान छीन लिया, और छीन करके साथ साथ में इस मूर्ति को भी छीन लिया। तब से ये लंका में पूजित होती थी, विभीषण जी को पूजा करने के लिए दी गई थी। रावण तो तामसिक था किंतु विभीषण जी उसकी पूजा उसी राजमहलों में करते थे रावण के आदेश से। पीछे से लंका विजय के बाद में रामचंद्र जी उसी मूर्ति को लेकर के अयोध्या में पधराया, उसकी पूजा उनके राजभवन में होती रही, सीता जी पूजा करती थी। पीछे से जब मथुरा, मैंने मथुरा नहीं था उस समय, मधुबन था, मधुबन में मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर उत्पन्न हुआ, वो अत्याचार करने लगा, तो ऋषियों ने उनको मरवाने के लिए, दमन करने के लिए रामचंद्र जी के पास बोले थे। रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न जी से कहा, राज तिलक कर दिया बड़े, पहले तो उन्होंने कहा प्रभो भैया आज तक आपने हमको कोई भी सेवा नहीं दी, लक्ष्मण जी को सेवा दी वो लड़ाई किए, भरत जी को भी आपने कुछ सुजोग दिया, किंतु आपने कोई हमें आदेश नहीं दिया। तो उन्होंने, वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मधुपुरी का राज्य का, मधुबन का राज्य का राज तिलक उनको दे दिया। अब पड़ेंगे कठिन समस्या में पड़े, जब भाई को छोड़ करके हमको अब मथुरा में जाना पड़ेगा, अब इनके साथ में नहीं रहेंगे, हमको राजा बना दिया, ये तो वर के बदले अभी संपात हो गया, जो भाई की सेवा छोड़ करके मुझे रहा। बड़े दुखी हो गए। रामचंद्र जी ने समझाया दुखी होने की बात नहीं है, इसमें भी विशेष कुछ कारण है, इसलिए तुम जाओ। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे किंतु आपके चरणों में मैं कुछ इच्छा करना चाहता हूँ। क्या इच्छा करना चाहते हैं? वो जो सीता जी जो बारात जी की पूजा करती हैं, जो आप लंका से ले आए, वो मूर्ति हमको दे दीजिए और हम आपके प्रतिनिधि के रूप में उन्हीं की हम पूजा करके वहाँ पर रखेंगे और उनकी हम प्रतिष्ठा करते रहेंगे। तो प्रसन्न होकर के वो मूर्ति उनको दे दिया और उसी मूर्ति को लेकर के पूजन करते रहे और उसी के कृपा से, वैसे तो वो विष्णु ही हैं, तभी मानो उन्हीं की पूजा से लवणासुर का उन्होंने वध किया और अपनी राजधानी मथुरा में उन्होंने आरंभ किया। तब से ये मधुबन मथुरापुरी के रूप में भी, इसलिए कभी कभी हम समझते हैं कि ये मथुरा ये द्वादश वनों से, वृंदावन से कुछ अलग है, तो कुछ अलग नहीं, मधुपुरी के अंतर्गत में ही ये मधुबन के अंतर्गत में ही ये मथुरापुरी है, और मधुबन में ही महाराज मैंने एकादशी वाले दुर्वासा अम्बरीश महाराज जी इसी मधुबन में ही, अर्थात यमुना के तट पर जहाँ अम्बरीश शिला है यहीं पर उन्होंने भगवान की आराधना कर दी थी और एकादशी व्रत यहीं पर रह करके एक वर्ष कंप्लीट, जितनी एकादशी होंगी हम उसमें उपवास करेंगे और यहाँ रहेंगे। राज्यकार उनका मध्य प्रदेश में, किंतु यहाँ पर निवास करते हैं। और जगहों में एकादशी कर किया जाता है उसका फल है, किंतु मथुरापुर में यदि एकादशी की जाए तो उसका फल कुछ और निराला है। और जगहों में काशी, अयोध्या, माया, अवंतिका और सब जो क्रिया है या साधारण जगहों में भक्ति की जाएगी तो उसका फल तो है कुछ, किंतु यदि मथुरापुरी में वृंदावन में जो भी वो भक्ति हो जाए, यहाँ पर निवास करके यदि हो तब कितना उसका महत्व होगा, बहुत बड़ा भारी महत्व। इसलिए शत्रुघ्न जी ने इस पुरी को उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बसाया। ऐसे तो पुरी नित्य है, यत्र सन्निहितो नित्य हरि, ऐसे तो नित्य है, किंतु व्यवहारिक लोग, स्थूल दृष्टि वाले लोग नहीं देख पाते। अभी भी वृंदावन में राष्ट्र इत्यादि है और वैसा ही है, नंद भवन इत्यादि भी है, सब कुछ है, गोचारण कृष्ण करने रोज जाते हैं, ये बात सब ठीक है, किंतु तो वो गोचारण करने जाते हैं। मथुरापुरी में भी कृष्ण है, द्वारकापुरी में भी कृष्ण है, हम देख नहीं पाते हैं। तो शत्रुघ्न जी के पहले भी यहाँ पर मथुरा थी, कभी प्रलय में ध्वंस नहीं होती और सब समय वहां पर भगवान रहते हैं, किंतु जब प्रकट काल होता है उस समय योग माया के, भगवान की आत्म माया से जीवों का संपर्क और इस धाम के साथ में संपर्क होने से उस समय जो लोग उस समय जीवित रहते हैं सभी लोग उनको दर्शन करते हैं। अभी हम लोग दर्शन नहीं काट पा रहे हैं, किंतु फिर भी मथुरा वही है और यही पर है, हम लोग मानो जाल के ऊपर से हैं। तो आज एकादशी और प्लस द्वादशी, और कल कितने बजे के पहले,
10 बजे तक
सूर्योदय से लेकर सूर्योदय के बाद में ठाकुर जी की पूजा करके और तब फिर उन्हीं के प्रसाद अन्न से पार कर साधु वैष्णव भगवान सबकी छुट्टी कर। वही तक शत्रुघ्न जी लाए थे, वो तभी से यहाँ की स्थापना है, तभी से ये चल रहा है। कल हम लोग बैकुंठ में नारद ऋषि, नारद ऋषि और गोप कुमार को बातों को हम लोग कर रहे थे। गोप कुमार ने पूछा श्री विग्रह के संबंध में, जो जगन्नाथपुरी में और श्रीरंगम में वहाँ बद्रीनारायण में और ऐसे सिद्ध क्षेत्रों में जो सिद्ध अपने आप जो प्रकटित जो विग्रह हैं जिनको किसी मनुष्य ने प्रकट नहीं किया है, ये जगन्नाथ जी को भी वहाँ पर को भी श्रीरंगम वाले में भी वेंकटेश्वर को ऐसे को किसी ने प्रकट नहीं किया, अपने आप हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी पूजा और भगवान की पूजा दोनों थी, किंतु और सब लोगों की पूजा भी क्या उसी के बराबर है, उसका भी कुछ फल होता है, क्योंकि शास्त्रों में कहीं कहीं कुछ श्री विग्रह के पूजा के विरुद्ध में कुछ बताया गया। पाषंडी सगोपरह, जो ठाकुर जी की पूजा तो करते हैं किंतु समस्त प्राणियों में भगवान का भी स्थान नहीं जान करके उनका द्रोहाचरण करते हैं, उनका निंदा करते हैं, उनका अवमानना करते हैं, अपमान करते हैं, वो लोग गोखर हैं और वो लोग नरक जाते हैं। जो लोग प्राणियों के अंदर में, जीवों के अंदर में, भूतों के अंदर में भगवान का दर्शन नहीं करते या नहीं मानते, उनसे लड़ाई झगड़ा और ये सब करते हैं, वो लोग भी ठाकुर जी की पूजा को ग्रहण नहीं करते। विशेष करके एक बात बतलाया है, बहुत से लोग ठाकुर जी की पूजा करते हैं, बहुत से लोग ठाकुर जी की पूजा, किंतु विरले लोग ही ठाकुर जी की पूजा करते हैं। पूजा करने ऊपर से दिखने पर भी ठाकुर जी की पूजा नहीं करते। मान लिया कि कहीं पर ठाकुर जी की पूजा हो रही है, कोई आदमी धनाढ्य व्यक्ति लगे हम 50,000 रुपये दे रहे हैं और ठाकुर जी का बंगला बिहारी जी के बंगला, बड़े बड़े धनी लोग ऐसा कर सकते हैं, तो उस धनी ने ठाकुर जी का बंगला के लिए क्यों दिया? ऊपर से मालूम पड़ता है कि ठाकुर जी की बड़ी भारी उसने सेवा की, किंतु उसने देखा वो जो व्यक्ति दिया उसके मन की भावना कहाँ है, उस पर निर्भर करता है ठाकुर जी का सेवा करने का। अन्यथा वो पूजा होगी या नहीं होगी इसमें संदेह की बात, यदि उसने ये देखा भाई 50,000 रुपया खर्च करेंगे और कलाकार कहाँ कहाँ से आकरे से और कहाँ कहाँ से हम बुलाएंगे, लोग देखेंगे हमारा वैफल करता है, ठाकुर जी का मैं कैसा पूजा करता हूँ, ये यदि उसकी भावना रही और उसमें लिख दिया नीचे फूल चांद मथुरा वाले तरफ से ना, ठाकुर जी की यह सेवा फूल चांद मथुरा वालों की तरफ से, तो ये पूजा कितनी ठाकुर जी ने ग्रहण किया कि नहीं? नाम ना देने पर भी और नाम नहीं देने पर भी यदि हृदय की भावना है, जब लोग देखें लोग कहेंगे हमने ठाकुर, ऐसे ठाकुर जी का कभी नाम नहीं लेते, कोई सेवा नहीं करते, ठाकुर जी की सेवा करते हैं इसका प्रमाण क्या है? यदि किसी वैष्णव की साधुओं की संतों की सेवा गरीबों की कुछ कुछ सहायता करें तब तो उसमें समझ में आ जाएगा यहाँ ये ठाकुर जी की सेवा, और ये लक्षण है नहीं, कोई संत गया उसके पास अरे जाओ जाओ वहाँ पर अल्सिशियन डॉग रख रखा है, दो दरवान है वहाँ, लाल कपड़ों वालों को मत आने देना और भीतर से कुत्ते को कह तू 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 करके उस पर लगा देगा, छोड़ देगा, एक आदमी को एक दिन काट देगा वो हंसेगा अरे अब वो कभी नहीं आएगा, और उधर में वो काम हो रहा है। अभी मान लो कि 2.5 लाख रुपया लगा करके उनका द्वारकाधीश में 56 भोग हुआ और उसकी प्रसाद बड़े बड़े लोगों के यहाँ सब जगह पर, अच्छा वो जो 56 भोग हुआ ठाकुर जी ने ग्रहण किया हुआ है कि या नहीं, उस व्यक्ति के ऊपर में निर्भर करता हूँ। और एक आदमी ने कुछ नहीं किया, एक तुलसी का पत्ता बड़े प्रेम के साथ में उठा करके ठाकुर जी के सामने और सब वैष्णवों को प्रणाम करता है और वही तुलसी का पत्ता ठाकुर जी को लगा करके उसको एक एक आधी 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 का आधा प्रसाद को बांट, अब दोनों में पूजा कौन सी बड़ी हुई? इसलिए ठाकुर जी किसकी पूजा करते हैं जज जज दियो, इसलोक इसमें दिया आज समय हो गया है 6:30, इसलिए संक्षेप में केवल एक बात उसमें से बतलाई, उसमें बहुत सी बातें हैं अर्चन के संबंध में, पूजा के संबंध में, ठाकुर जी की प्रतिमा की पूजा करने के संबंध में हम सब लोगों को अच्छी तरह से जानना चाहिए, और नहीं जान करके यदि करेंगे ना बस अपराध हो जाएगा। ठाकुर को अपने आप आत्मकाम और आपका आराम है, उनको किसी की सेवा और किसी की भोग की कोई किसी की कोई जरूरत नहीं है, न भूख है, न सर्दी है, न गर्मी है, न कुछ है, नहीं? तब यदि हमारे अंदर में वैष्णवों के प्रति श्रद्धा का भाव और जीव मात्र में ही भगवान का अधिष्ठान का भाव है, और इस तरह से यदि वो ठाकुर जी का सेवा करता है तो ठाकुर जी को भूख लग जाती है, वो सेवा को करने का। अन्यथा भूतद्रोही व्यक्ति, भूतद्रोही मैंने समझते हैं भूतद्रोही, और भूतद्रोही में से यदि कोई हरिनाम थोड़ा सा करता है कनिष्ठ अधिकारी भी, और उनको माता पीटता है, कोई सेवा करने के लिए घर बात को करके आया, अब बेटा घुसी लगा दिया, उसे द्रोह कर रहा है, उसको भगा दिया, भजन से हटा दिया, या उससे भी उन्नत अधिकार वाला कोई मध्यम अधिकारी है, उनका अपमान कर दिया यदि कभी, तो कोटि कोटि पुण्य भी जितने हैं ना सुकृति वो सब कुछ मिलता है। और यदि उत्तम भागवत के प्रति यदि वो भाव हो गया तो भगवान कभी उसकी पूजा लेने कभी नहीं कर सकते। इसलिए रावण बराह जी की पूजा करता था या करवाता था, प्रभु ने पूजा लिया, शंकर जी